रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। देखो ये अरण्य कांड है ना, अरण्य कांड में वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की जो शिक्षाएं आती है उनको तुलसीदास जी महाराज ने अपने शब्दों में बड़ी सरलता से कही है। इसका नाम वे और कांड भी रख सकते थे, वाल्मीकि जी महाराज, वाल्मीकि जी के ही नाम रखे इन्होंने। वाल्मीकि जी ने जैसे बालकांड लिखा ऐसे इन्होंने भी बालकांड नाम रखा। एक कांड में थोड़ा परिवर्तन आया है, वाल्मीकि जी महाराज ने युद्ध कांड लिखा, इन्होंने लंका कांड नाम रखा। बाकी अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, वैसे के वैसे रखे, नाम वही रखा। तो ये अरण्य कांड रखा तो ये क्यों रखा कि आरण्यक उपनिषद बने हैं। तो जंगलों में बैठ करके जो संत महापुरुष बैठ करके एकांत में विचार करते थे ऐसे ऐसे पवित्र विचार इस अरण्य कांड में आते हैं। तो भगवान अत्रि के आश्रम में गए थे और अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी ने सीता जी को निमित्त बना करके सारे संसार को पातिव्रत्य का उपदेश दिया। उसके बाद भगवान चित्रकूट से प्रस्थान करके और रास्ते चलते चलते विराद को सदगति दे करके सर्वंग ऋषि के आश्रम के पास जा रहे थे। इधर सर्वंग ऋषि ने देखा, उसने सुना कि राम जी अब तुम्हारे आश्रम की तरफ आएंगे, तो वो बड़ा खुश हो गया। आश्रम के बाहर आकर के प्रतीक्षा करने लगा, अब आए राम, अब आए, अब आए। देखो ये एक प्रतीक्षा है ना, ये भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। प्रतीक्षा करने वाले साधक के मन में भगवान के आगमन की विश्वास की भावना हो, जब विश्वास होगा आएंगे ही आएंगे ही। एक बार की बात है, महाराज जी ने गोरखपुर में भाषण दिया कि जो आदमी ये विश्वास करता है कि भगवान जरूर आएंगे तो उसके पास आ ही जाते हैं। तो एक आदमी बाजार गया और पूजन की सामग्री माला वगैरह लेकर के कमरे में बैठ गया। किसी को नहीं कहा आपने, घर में किसी को भी नहीं कहा, स्त्री को कि बेटे को कि किसी को भी नहीं कहा। अपना रात्रि में बैठ करके अब भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, ये जो है चंदन से उनका स्वागत करूंगा, चंदन लगाऊंगा, चरणों में लगाऊंगा, माला पहनाऊंगा, ऐसे ऐसे वो सारी रात रहा, भगवान तो नहीं आए। तो दूसरे दिन वो महाराज जी के पास गया कि महाराज जी आपने तो कहा था कि जो विश्वास पूर्वक ये सोचे कि भगवान आएंगे तो उसके पास आ ही जाते हैं, विश्वास की भावना जागृत हो तो भगवान उसके कोई कर्म वगैरह नहीं देखते। तो मैंने तो महाराज कल सारी रात जागरण किया, प्रतीक्षा की, भगवान तो नहीं आए, क्या कारण है? तो महाराज जी ने एक बहुत मर्म की बात कही, कहा कि तुम्हारे कभी कभी मन में ये आता था क्या कि मेरे तो ऐसे ऐसे कर्म है, इतने जल्दी थोड़े ही आ सकते हैं, कि ये भाव तो आता था, कि ये भाव आता था ना, इसी ने अटका दिया, नहीं तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, भगवान बड़े दयालु, मेरे किसी भी कर्म को भगवान नहीं देखेंगे, क्यों देखेंगे भगवान, जरूर आएंगे, पक्का निश्चय होता तो आ ही जाते हैं। कि हमारा जब वो भगवान नहीं आते दिखते हैं तो ये भावना भी तो होती है कि ये भावना ही आपके लिए रुकावट का कारण बनी। तो फिर महाराज आए क्यों नहीं, कि तुम्हारे विश्वास ही नहीं हुआ। कहा एक बात तो मैंने देखी, क्या? वो कमरे के अंदर एक दिव्य सुगंध आई थी, अब मैंने वो फूल को भी सूंघा, सूंघना तो नहीं चाहिए था, भगवान को चढ़ाना है, पर मैंने वो फूल को सूंघा, उसमें भी ऐसी सुगंध नहीं, और चंदन वगैरह में वही नहीं, कोई कपूर में भी नहीं, वो एक अलग ही सुगंध तो आई थी कि वो गंध रूप से भगवान आ गए। इसलिए भगवान कैसे आते हैं? प्रतीक्षा से आते हैं, विश्वास से आते हैं। हमारे सर्वंग ऋषि के मन में बड़ी प्रतीक्षा थी, भगवान आए उसके आश्रम के पास, भगवान का स्वरूप देखा तो सर्वंग ऋषि तो मस्त हो गया, वो एक तक भगवान को यूं निहारता रहा, भगवान का मुख कमल देख करके उसके आंखों से जल धारा बहने लगी और रूप का खूब पान करता रहा, और पास में जाकर बड़े सरल सरल ढंग से कहने लगा कि महाराज आप तो शंकर भगवान के मन में रहने वाले राजहंस हो, मैं तो ब्रह्मा जी के धाम में जाने वाला था, मैंने सुना कि इस मार्ग से आप आने वाले हो, तो रात दिन आपकी प्रतीक्षा करता रहा कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, अब आपको देखा तो मेरा मन बहुत तृप्त हो गया। अब देखिए साधक का क्या भाव होता है, अपने तो थोड़ा सा राम राम कर लेते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, भगवान का कोई पाठ पूजा मन से बेमन से, तो साहब इतना करते हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ, अरे करने वाले तो ये हैं, ये क्या बोलते हैं, नाथ सकल साधन में हीना, महाराज मेरा जीवन यूं ही चला गया, मैंने कोई साधन भजन ही नहीं किया, सब प्रकार के भजन साधन से मैं हीन हूं महाराज, आप कोई भजन साधन के बल पर मेरे पास नहीं आए दर्शन देने के लिए, आप अपने कृपालु स्वभाव से ही आए। तो आपने कोई मेरे पर एहसान भी नहीं किया है महाराज, क्यों? तुम्हारा भजन साधन भी नहीं है, मैंने कृपा पूर्वक दर्शन दिया, एहसान क्यों नहीं है? कि महाराज एहसान क्यों? निजपन राख है जनमन चोरा, भक्त लोगों के मन को तो आप चुरा लेते हो, और फिर जो है ये अपनापन भी तो है, आपकी प्रतिज्ञा भी तो है ना, कि जो मेरा हो जाता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं दर्शन देऊं न देऊं, मिलूं न मिलूं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप आगे दर्शन दे दिया तो एहसान थोड़ा ही है। अब महाराज, हे दिनों के हित में रहने वाले प्रभु, जब तक ये मेरा शरीर न जाए तब तक आप मेरे पास रहो, मैंने जीवन में जो कुछ भी यदि साधन भजन किया भी होगा तो उन सब साधन भजन को आपके अर्पित करता हूं। प्रभु कहे दे, भगवान को दे दिया महाराज, सब आपको अर्पण है महाराज, और आप तो अपने चरणों में रखिए मुझे, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे, उसने चिता बनाई और भगवान को अपने हृदय में रखा। भगवान का जो स्वरूप था सीता जी का और लक्ष्मण का स्वरूप साथ में, वो कहने लगा
सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही अबसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम।
आपका ये रूप है ना सीता जी सहित और लक्ष्मण जी सहित, ये रूप मेरे हृदय के अंदर बसा रहे। क्या सुंदर नील बादल के समान आपका ये स्वरूप है महाराज। ऐसा कह करके चिता में बैठ गया। अब आग कौन लाए? तो उन्होंने ध्यान किया, ध्यान से आग को प्रकट किया। इसको कहते हैं योग अग्नि। अपने अंदर वायु भी हो और अपने अंदर अग्नि भी हो, इन दोनों को ध्यान के द्वारा सूक्ष्म तो है ही प्रकट कर लिया योग अग्नि में, और भगवान की कृपा से वो बैकुंठ चला गया। भगवान के अंदर नहीं मिला, जैसे कहीं कि आप देखेंगे ज्योति जाई भगवान में मिली, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो भगवान की भेद भक्ति करता था। भगवान तो मेरे स्वामी है और मैं भगवान का दास हूँ। ऐसी जो भेद भक्ति रखते हैं, वे भेद भक्ति वाले सायुज्य को प्राप्त नहीं होते। भगवान के अंदर मिलने का नाम सायुज्य है, सायुज्य को प्राप्त नहीं होते। वो जैसी उनकी भावना वैसे ही रहते हैं, बैकुंठ में सेवक बने हुए रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये सब चीज देखी, भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। कहने लगे महाराज ये सर्वंग ऋषि है, ये तो बहुत बड़े श्रेष्ठ निकले, हम में सबसे श्रेष्ठ निकले महाराज। भगवान सब ऋषि मुनियों को साथ में लिए लिए ज्ञान की चर्चा किए कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे चलते चलते उन्होंने बहुत बड़ा हड्डियों का ढेर देखा। भगवान ने बड़े आश्चर्य से पूछा ये इतना इतना हड्डियों का ढेर कैसे लगा है भाई? हे मुनिवर, इतने इतने हड्डियों का तात्पर्य क्या है बताइए आप। तो ऋषि समुदाय कहने लगा कि देखो आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो, सर्वदर्शी हो, फिर भी आप हमको कहने के लिए बोलते ही हमारा सौभाग्य है। इतनी देर आपसे कुछ बात करने का हमको मौका तो मिलेगा। ये यहाँ अच्छे अच्छे महापुरुष रहते थे, ये निशाचरों ने इनको खा लिया और हड्डियों को फेंक दिया। अरे ये ऐसी पवित्र साधन भजन करने वाले ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं कि? हाँ महाराज। तो भगवान ने सबके बीच में वहां सजल नेत्रों से भाव में डूबकर प्रतिज्ञा की कि देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान ने भुजा उठा के प्रतिज्ञा करने की बात क्यों कही? कि भाई जिस बाप ने मेरी प्रतिज्ञा करके मुझे वन में भेज दिया था, वो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा, मेरे पिता दृढ़ रहे, उन्हीं पिता का मैं बेटा हूँ, तो मैं भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहूंगा। निश्चर ही न करहूं मही भुज उठाय पन कीन सकल मुनिन के आश्रमनी जाय जाय सुख दीन। भगवान कहने लगे कि इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से रहित करूंगा। ऐसे कह करके भगवान सब ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए। चलते चलते आगे भगवान सुतीक्ष्ण जी थे, सुतीक्ष्ण जी उनके उधर उस दिशा में रवाना हुए। ये सुतीक्ष्ण नाम का जो ऋषि था वो अगस्त जी का शिष्य था, अनन्य भाव से भगवान का भक्त था। सपने वो आन भरोसन देवक, स्वप्न में भी भगवान के अतिरिक्त किसी का भी वो सेवक नहीं, किसी देवी देवता को नहीं माने, केवल भगवान को ही माने, ये निष्ठा है। देखो आजकल लोग क्या करते हैं, साहब हमारी इसमें निष्ठा है, हमारी उसमें निष्ठा है, यहां तक तो सही है, निष्ठा अपनी जिसमें हो उसमें रखो, लेकिन अपनी निष्ठा जिसमें नहीं होती उसका खंडन करना ये कमी की बात है। अपने अंदर निष्ठा की कमी है। जैसे कोई कहे साहब हम तो राम को ही मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम तो निर्गुण को ही मानते हैं, सगुण को नहीं मानते। सगुण को नहीं मानने पर ज्यादा जोर देते हैं, राम को मानते हैं कृष्ण को नहीं मानते, तो राम के मानने में ज्यादा जोर नहीं लगाते, कृष्ण को नहीं मानने में लगाते हैं। हम और किसी को नहीं मानते, हम तो इन्हीं को ही मानते हैं, तो इनको मानो बस, दूसरे का खंडन करो ही क्यों। दूसरे का खंडन करने का अर्थ है कि आप उनको मान रहे हो। दूसरों के खंडन करने का अर्थ ही यही है कि उनको हम मान रहे हैं। ऊपर से हम नहीं मानते साहब, राम जी को मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते। क्यों? अरे कृष्ण तो यही ग्वाला था, ये था वो था, यही बांसुरी बजाता फिरता था। तो ये क्या है, कृष्ण को मान रहे हो तुम? कृष्ण को माने तुम मतलब क्या, इतना समय क्यों लगाया कृष्ण के खंडन करने में? ऐसे ही साकार का खंडन करने में समय लगाते हैं और कहते हैं हमारे तो निराकार में निष्ठा है, ये अनन्य भाव है ही नहीं। अनन्य भाव वो होता है कि उसमें भाव बना लिया बस, अपनी सब कुछ सीमाएं वहीं तक समाप्त होती है, दूसरों का खंडन न करें। सुतीक्ष्ण जी को पता चला कि अब राम जी आ रहे हैं तो बड़ा मनोरथ जागा उसके। हे प्रभु आप यहाँ पधारेंगे, करत मनोरथ आतुर धावा। वो इधर से आएंगे कि उधर से आएंगे, उधर से मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं इधर से आगे मैं नहीं मिला तो, अच्छा इधर चला गया वो इधर से आगे नहीं मिला तो, ऐसे वो कई प्रकार के मनोरथ कर कभी इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है कभी इधर दौड़ता है। और क्या, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे रघुनाथ महाराज, मेरे जैसे 60 आदमी पर भी आप दया कर रहे हो, मिलो महाराज, आपके दर्शन होने चाहिए, आप सीता सहित और लक्ष्मण सहित मुझे दर्शन दीजिए महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगत विरत न ज्ञान मन माही। न तो मेरे अंदर कोई विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, न मेरे अंदर भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कुछ भी तो नहीं है, मैंने सत्संग भी नहीं किया, योग भी नहीं किया, जप तप भी नहीं किया, न आपके चरणों में दृढ़ अनुराग है, बस मैं तो एक बात पर बस बैठा हुआ हूँ। क्या? एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। आपकी एक बाण है, बाण माने आदत है कि आपको वो बड़ा प्रिय लगता है कि जो सबको छोड़ करके आपको आपको आपसे प्रेम करता है। सो प्रिय जाके गति न आने की, आन माने दूसरा, जिसके कोई दूसरा है ही नहीं, जो दूसरे को अपने लिए मानता ही नहीं, बस वही आपके लिए प्रिय है, ये आपकी आदत है। इसलिए महाराज जल्दी दर्शन देओ, आप कहाँ हो किधर हो, जोर जोर से चिल्ला रहा है वो कि महाराज दर्शन देओ दर्शन देओ। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। हे पार्वती, उसकी दशा तो कोई कह ही नहीं सकता है, इतना वो प्रेम में डूब गया, भगवान के प्रेम में डूब गया। चारों तरफ उसने भगवान को देखा और वो कोमे चलऊ कहां नहीं बूझा, कबहू की फिर पाछे पुनि जाई, कबहू के नृत्य करे, कभी तो दौड़ता है कभी खड़ा रहता है, कभी नेत्र बंद करता है कभी नाचता है कभी चुप हो जाता है। ऐसे ऐसे उसकी दशा हो रही थी। उधर भगवान ने देखा कि अच्छा सर्वंग ऋषि इतने, सुतीक्ष्ण ऋषि इतने मेरे प्रेम में पागल से हो रहे हैं, तो एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए भगवान और देखे नहीं क्या होता है। देखे प्रभु तरु ओठ लुकाई, वृक्ष के पीछे खड़े होकर देखने लगे। अब वो नाचे करे तो यही तो भक्ति है। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओठ लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अब क्या हुआ कि भगवान ने देखा कि अब इसके अंदर बड़ा प्रेम पैदा हो गया, तो भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए। देखो ये प्रसंग है ना, ये साधन भजन करने वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। भगवान ने देखा कि मैं वृक्ष से यहाँ तक जाऊंगा, इसका तो मतलब मेरी भक्त से दूरी हो गई, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए। आपने पहले पहले पद सुना था ना, जा कारण में बन बन ढूंढ्या, सोधि रहा सुन ही सुन में। जिसके लिए मैं जंगलों में गया, जहां जहां भटका वो तो मेरे अंदर मौजूद है, अपने अंदर। जो अपने को संसार में चाहिए ना, वो अपने पास मौजूद है। हम फालतू ही बार इधर उधर भटकते हैं। जो आनंद हम संसार में लेना चाहते हैं, वो आनंद हमारे पास पहले से ही लबालब भरा पड़ा है। संसार के भोगों से कि पदार्थों से, इज्जत से कि मान से कि बड़ाई से, जो हमको मिलने वाला है वो हमारे पास है पहले से ही। ये बताने के लिए भगवान अतिशय प्रीत देख ही रघुराया रघुवीरा प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए और अपने हृदय में यूं भगवान के स्वरूप का दर्शन करके इतना मगन हो गया है, बेसुध हो गया सुतीक्षण, अचल हो वैसा, ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई वृक्ष खड़ा उठो और पुलक शरीर, शरीर में एकदम पुलकित हो गया, बाल रोंगटे खड़े हो गए। उपमा दी है, उपमा कैसी, पनस फल जैसे। पनस फल माने, पनस बोलते हैं कटहल को, कटहल का फल होता है उसमें यूं यूं कांटे से रहते हैं, कड़े कड़ापन रहता है कटहल का फल, ऐसे ही रोमावली नहीं हुई खड़ी हो गई, पुलक शरीर पनक पनस फल जैसा। वो आंख बंद किए और मस्त थे वो, तो भगवान उसके पास चले गए। भगवान पास में आए तो उसको तो पता ही नहीं चला। भगवान कहने लगे, सुतीक्षण जी सुतीक्षण जी, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। सुतीक्षण जी आप देखो तो सही, खूब जो है वो भगवान बोलते हैं, लेकिन अपने हृदयस्थ भगवान के रूप में उनको इतना आनंद का अनुभव सुनते ही नहीं, और उसी रूप में मस्त हुए वे बैठे हैं। भगवान ने देखा कि अब तो भाई इनको इस ढंग से नहीं जगा सकते, तो अपने उनके हृदय में जो चतुर्भुज रूप था, चतुर्भुज रूप भगवान ने हटाया ध्यान से, एकदम घबराए जैसे हमारे हाथ में कोई चीज हो और एकदम आगे कोई छीन ले, ऐसे कि क्या कौन ले, अच्छा अच्छा ऐसे, तो सामने ही भगवान को देखा। मुनि अकुलाई उठा जब कैसे, विकलहीन मनि फनिबर जैसे, जैसे सर्प के माथे पर मणि हो और वो मणि कोई छीने, सर्प कैसे फुंकार करता है, ऐसे वो जो अकुला करके उठे, आगे जाकर के भगवान का स्वरूप देखा। ओहो क्या भगवान का श्याम शरीर है, सीता जी पास में विराजमान है, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में है, तीनों के तीनों मुस्कुरा रहे हैं, इनके दर्शनों से आनंदानुभूति हो रही है, चरणों में डंडे की तरह से गिर गए, कुछ बोला ही नहीं गया उनसे, कुछ बोल नहीं सके प्रेम में। भुज विशाल गई लिए उठाई, भगवान ने बड़े प्रेम से उनको उठाया और अपने छाती से लगाया। मिलई मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तोरई तनु भेट तमाला। देखो उपमा देखिए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब वो मिले ना तो ऐसा लगा कि कोई तमाल वृक्ष है, वो सोने के वृक्ष से मिलता हो। तमाल वृक्ष होता है श्याम वर्ण का, और सोने का वृक्ष सोना होता है पीला गौर वर्ण वाला, तो वो ब्राह्मण था गौर वर्ण वाला और भगवान थे श्याम वर्ण वाले, तो कनक तरुई जनु भेट तमाला। फिर भगवान का सौंदर्य देख करके उसके मन में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि महाराज अब आप हमारे आश्रम में पधारो। आश्रम में ले जा करके बैठाया, अनेक प्रकार से पूजा की। अब पूजा में भी कभी वो चीज लाए वो लाए वो, माने वो पूजा भी भूल गया। देखो जब भगवान की विशेष कृपा होती है ना, विशेष भक्ति होती है, तो ये माला भी छूट जाती है, मंत्र भी छूट जाता है, ये केवल चित्त में भगवान ही बस जाते हैं। जैसे कोई आदमी किसी काम में लगा हुआ होता है तो और काम को भूल जाता है, अरे अरे अच्छा ये बात थी क्या, भूल गया ये हाँ मैं भूल गया कई बातों, क्योंकि जिसमें दत्त चित्त होकर लगता है तो दूसरी बात उसमें याद ही नहीं रहती। इतने दत्त चित्त हुए कि पूजा में भी यहाँ पता ही नहीं मैं क्या चीज लाऊं और क्या नहीं लाऊं, भगवान सब देख रहे हैं मुस्कुराते हुए। अंत में फिर उसने कहा कि महाराज मेरे से आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती है, मैं आपकी महिमा जान नहीं सकता, आपकी महिमा तो है अनंत, मेरी बुद्धि है बहुत छोटी। एक सूर्य के विषय को, सूर्य के प्रकाश को कोई जुगनू बता सकता है क्या? क्या सुंदर आपका ये श्री विग्रह है, जटा मुकुट आपने पहन रखा है, ऋषि मुनियों जैसा वस्त्र पहन रखा है, ये तो आपने ऋषि मुनियों पर कृपा करने के लिए पहना है। क्या आपके नेत्रों में ललाई है, ये ललाई क्या है, ये प्रेम का प्रतीक है, तो इससे आपका प्रेम प्रकट होता है, इसीलिए सीता जी आपके नयनों को हरदम देखती रहती है। निर्गुण रूप भी आपका है, सगुण रूप भी आपका है, ज्ञानी लोग भी आपको किसी प्रकार से इदम इत्थम जान नहीं सकते हैं। महाराज संसार के लोगों में जो इस भवसागर के सेतु आप बने हुए हैं, तो आप बड़े चतुर हैं, बिचारे हमारे जैसे दीनहीनों को इस पुलिया के द्वारा बाहर ले जाते हैं, संसार से बाहर बनते। भगवान की जो कृपा होती है ना, वो सागर के ऊपर सेतु जैसे होती है। अब सागर को कोई कैसे पार करे, ऐसे ही संसार सागर से पार करना बड़ा मुश्किल है, पर आप कृपा रूपी एक ऐसा सेतु बना दिया, पुलिया बना दिया, हम आराम से बात करते करते उससे निकल जाते हैं। कहते हैं महाराज वैसे तो आप सब जगह विराजमान हो और सबके हृदय में रहते हो, लेकिन हे खरारी आप मेरे मन रूपी जंगल के अंदर जरूर विराजो, मन रूपी जंगल में आप विराजमान रहो। या खरारी शब्द का है, खरारी, खरारी माने खर के शत्रु, अभी तो खर के साथ लड़ाई नहीं हुई। ऐसे ही वहां अहिल्या बोलती है, हे रावण डिपू आप मेरा उद्धार करो, तो रावण के साथ युद्ध ही नहीं हुआ, रावण डिपू कैसे कहा कि राम अनादि, भगवान है ये अनादि है, तो ये स्तुति करने वाले लोग हैं, इनसे पहले भी राम जी का अवतार हुआ हुआ है, कई बार अवतार हुआ, होता ही रहता है, एक बार राम जी का अवतार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, इसीलिए कल्प भेद से भगवान के लीलाओं में भेद मिलता है। कहते हैं महाराज लोग तो आपको कोई सगुण मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, जाने जाने महाराज, लोगों की बात लोग जाने, मैं तो इतना जानता नहीं हूं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर ये अभिमान रहना चाहिए कि मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। देखो अभिमान है ना, ये पतन करने वाला होता है, इसलिए अभिमान को तो नष्ट करना चाहिए। परंतु हमारे सुतीक्ष्ण जी बोलते हैं, हमारे सुतीक्ष्ण जी बोलते हैं कि मेरे अंदर ये अभिमान रहना चाहिए, जाय जनि भोरे, भोलेपन में भी मेरा अभिमान खत्म नहीं हो। पर अभिमान कैसा कि आप तो मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूं, ये अभिमान होना चाहिए। मैं भगवान का हूं, मैं मामूली नहीं हूं, भगवान का सेवक हूं, ऐसे अपने मन में अभिमान रहना चाहिए। कोई आदमी गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर नौकर है, बहुत बड़े पद पर है, तो वो कहता है भाई मामूली आदमी हूं क्या, मैं बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ऐसा हूं, तो वो अपने को सरकार का बहुत बड़ा सेवक मानता है, उसके अंदर एक अभिमान रहता है। ऐसा अभिमान भगवान का हो, भगवान के साथ हमारा होना चाहिए, मैं मामूली नहीं हूं, भगवान का हूं, भगवान का, ये बहुत बड़ी साधना है। देखो अभिमान को नष्ट करने में तो बड़ी कठिनाई आती है, अभिमान को बदल देने में बड़ी सुगमता है। अभिमान को बदल दिया जाए, बदलने में क्या है कि मैं संसार को लेकर के अभिमान करता था, उसकी जगह भगवान को लेकर अभिमान करें कि हम मामूली नहीं हैं, हम भगवान के हैं। क्या बताएं, सेठ जी की बात आती है कि किसी ने कहा कि सेठ जी आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, कभी कभी आपकी बताई हुई बातों के विपरीत हमारे मन में कई बातें आ जाती है, क्या करनी चाहिए? बताना है मन में, मन को फटकारो, गए हम जयदयाल के सत्संगी हैं, हम ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं, ऐसे खुला बोल दिया करो, खुला मान लो। इससे भी ऊंची बात बताई उन्होंने कि फिर कहो कि नहीं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे स्वामी है, भगवान के हाथ में मैं हूं, भगवान मेरी रक्षा करने वाले, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे करके अपने को और जो है भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, संतों के साथ जोड़ना चाहिए। असभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इससे ऊंची कोई साधना नहीं है जो इन्होंने बताई, अपने अहम भाव को बदल देना। इससे भगवान की भक्ति, इससे ऊंची कोई भक्ति नहीं है, इससे ऊंची कोई भक्ति नहीं है। भगवान इतने खुश हो गए, सुनी मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनिवर उर लाए। बार बार उनको भगवान उनको छाती से लगाते हैं, अरे सुतीक्षण मैं आज इतना प्रसन्न, तुम मांगो जो देंगे, मुझे परम प्रसन्न मानो, प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न, जो पर मांगो दे सो तो ही, मांगो तो सही जो मांगो सो देंगे। बड़ा चतुर है सुतीक्षण जी, कहने लगे महाराज मैंने तो आज तक कभी कोई वरदान मांगा ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपसे क्या मांगना चाहिए, अब क्या झूठ है क्या सांच है, मैं क्या मांग बैठूं महाराज, मुझे तो पता नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो दे दो जिसमें मेरा हित होता हो, नहीं भाई ये हम तुमको देते हैं, आप हमको दे दो। तुम्हें नीक लागे सोई दे, तुम्हें नीक लागे रघुराई, सोमोई देहु दास सुखदाई। मैं तो महाराज आपका दास हूं और मेरे हित के लिए जो आप दोगे मैं तो उसको प्रसाद रूप में ले लूंगा। एक ही भगत ऐसा हुआ है, ऐसा भगत जिसने भगवान से ये कहा कि महाराज मैं तो कुछ नहीं चाहता हूं, आपको मर्जी है सो आप दे दो। देखो ये बात काकभूषण जी भी बोलते हैं गरुड़ जी से कि देखो गरुड़ जी मेरे सामने भगवान ने कहा कि तुम मांगो, तो मैंने कहा कि महाराज क्या मांगू, ये तुम कुछ भी मांग लो, रिद्धि मांग लो, सिद्धि मांग लो, योग मांग लो, यज्ञ मांग लो, दान मांग लो, तप मांग लो, सब ज्ञान मांग लो, वैराग्य मांग लो, सब सब कुछ के लिए कहा, लेकिन भगति आपनी देनन कहे। मेरे को भक्ति के लिए नहीं कहा कि तू भक्ति मांग ले, तो मैंने कहा महाराज ये तो मुझे नहीं चाहिए, भगति आपनी देनन कहे। तो फिर बाद में मैंने कहा हे भगवान आप मुझे अपनी भक्ति दे दो, तब कहा अच्छा भक्ति दी तो क्या आप महाराज अपनी मर्जी से क्यों नहीं दी, कि भाई भक्ति तो मांगने से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है, ऐसे मैं भक्ति देता नहीं हूं, मांगने से मिलती है। या हमारे सुतीक्षण जी ऐसे है कि कुछ भी नहीं मांगा, मैं बर कब हूं न जाचा, और तुम्हें नीक लागे रघुराई, सोमुई देव उदास सुखदाई। तो भगवान ने कहा अविरल भगति विरति विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान, आपके अंदर अविरल भक्ति रहेगी, आपके अंदर वैराग्य रहेगा, आपके अंदर ज्ञान रहेगा, विज्ञान रहेगा, सकल गुण ज्ञान निधान, सारे गुण आ जाएंगे, आप सब भगवान ही उदारता से दे रहे हैं। अब सुतीक्षण जी क्या बोलते हैं, आपने मर्जी है इसे दे दिया ना, आपका खजाना खाली हो गया ना, अब मैं मांगू सो देव, प्रभु जो दीन सो बर में पावा, आपने जो दिया वो तो मैंने रख लिया, अब सो देव मोही जो भावा, अब मुझे वो देव जो जो है मुझे अच्छा लगता है। तो पहले क्यों नहीं बोले? पहले नहीं बोले महाराज, क्यों? पहले आपसे मिलने वाली वो चीज लेवे, ध्यान देना ये पहले क्यों नहीं बोले अब बताते हैं। पहले ये देखो कि वो मांगते क्या है। उन्होंने मांगा कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। महाराज आप सीता जी लक्ष्मण जी आप तीनों जिसमें आप धनुष बाण लिए हुए हो, मेरे मन रूपी आकाश के अंदर चंद्रमा के समान विराजमान होकर रहो और मेरे अंदर कोई कामना ही पैदा न हो, ये मम आपसे मांगते हैं। तो ये बात पहले क्यों नहीं कही? क्या देखो पहले इसलिए नहीं कही कि अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, जब भगवान ने भक्ति दी ना तो भक्ति के देने पर उन्होंने ये मांगा, क्यों ये बात भक्ति से ही पैदा होती है और जब अविरल भक्ति मिल गई तब ये ध्यान की बात पैदा हुई, ऐसा आपका स्वरूप मेरे अंदर बसा रहे। एव मस्तु करी रमा निवासा। और हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, कुंभज ऋषि के वहां गए तो सुतीक्षण जी बोलते हैं महाराज अगस्त ऋषि के यहाँ पधारोगे? अगस्त ऋषि तो मेरे गुरु है, उनको मैं आपको ले चलूं महाराज, आपको ले चलूं, मैं साथ में चलूं आपकी सेवा में, बहुत दिन हो गए गुरु महाराज के दर्शन किए हुए, तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ। कोई कोई महाराज तुम का नाथ नियोरा नहीं, कोई आपके ऊपर कोई नियोरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मैं खुद गया नहीं हूँ इसलिए आपको वहां ले जाने के लिए बात बोलता हूँ कि मैं आपको वहां ले चलूं। भगवान ने देखा कितना चतुर है ये, देखता है इतनी देर और साथ में रह जाए। अब चलते चलते वो यूं भगवान को यूं देखता है, यूं रूप अपने अंदर बसाता है और कहता है महाराज भक्ति का रूप क्या होता है, भक्ति कैसे होती है, भक्ति निरंतर कैसे बनी रहती है, ऐसे भगवान की निज भक्ति वो पूछते पूछते अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कहा महाराज आप यहाँ रहो, मैं जाकर गुरुदेव को सूचना देता हूँ। वो अंदर गया, अरे भगवान आए हैं? हाँ महाराज। तो अगस्त ऋषि सब काम छोड़ करके आश्रम के बाहर आए और भगवान ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर वो अंदर ले आए, आसन पर सब बैठे, कंदमूल फल वगैरह उनके सामने रखा और सब ऋषि मुनि आकर के वहां पर बैठ गए। सारे लोग ऐसे देखते हैं जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को लोग देखा करते हैं, ऐसे भगवान के रूप को देख रहे थे। अंत में फिर भगवान ने कहा हे ऋषिवर आपसे तो कोई बात छिपी हुई नहीं है, आप जानते हो कि मेरी ये वनवास लीला क्यों हुई है, आप खूब अच्छी तरह से जानते हो महाराज। ताते तातन कई समझाऊं, इसलिए मैं आपको ज्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अब महाराज आप मुझे वो शिक्षा दीजिए कि ऋषि मुनियों से द्रोह करने वाला रावण कैसे मर सकता है, ऐसी शिक्षा दीजिए। आगे ऋषि मुस्कुराने लगे, अच्छा राम खूब बड़ी बात कही आपने, पूछे वो नाथ मोहि का जानी, आप सब जान रहे हो और आप मुझसे ये बात पूछते हो, अच्छा मेरे अंदर यदि बताने की शक्ति आई भी है तो कहां से आई, आपके भजन के प्रभाव से तो आई है ना, इसीलिए तो मैं कुछ महिमा जानता हूं आपकी। महाराज उमरी तरु विशाल तव माया, आपकी माया है ना ये गूलर के फल की तरह से, गूलर का फल होता है उसके अंदर ही वो आप यूं उसके दो भाग करो अंदर बहुत जीव जंतु निकलते हैं, ऐसे ही गूलर के फल के समान ये प्रत्येक ब्रह्मांड है, ये माया तो है गूलर वृक्ष और ब्रह्मांड है उसके फल और उसके अंदर जितने हम लोग जीव जंतु हैं वो छोटे छोटे हैं जीव जंतु। तो महाराज आप तो इतने महान हो, और मुझे आप साधारण आदमी की तरह पूछते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, माने मैं आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए। महाराज वो बात तो छोड़ो, मैं तो आपसे पहले वरदान लेना चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में बसे रहो। आप बसो चाहे न बसो, आपकी अविरल भक्ति मेरे अंदर रहनी चाहिए, वैराग्य रहना चाहिए और सत्संग मिलते रहना चाहिए। देखो ये सत्संग है ना, ये भगवान की भक्ति की रक्षा करने वाला साधन है। कोई आदमी भूला हो, भटका हो, तो सत्संग के द्वारा वो बहुत जल्दी भगवान के मार्ग पर चल सकता है। इसलिए सत्संग के द्वारा आपके चरणों में हमारी प्रीति हुआ करती है। आप महाराज संतों संतत दासन देहु बढ़ाई, सदाई छोटों को बढ़ाई देते आए हो, इसीलिए आप मुझे पूछ रहे हो। तो हे राम, मैं अब आपको एक जगह बताता हूं, वो जगह है पंचवटी। वहां पांच बट के पेड़ है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते ही नाऊं। ये दंडक वन में जाइए और दंडक वन में गौतम ऋषि का सांप जो मिला हुआ है, उस सांप से इस दंडक वन की रक्षा कीजिए। वहां पर आप रहिए और वहां से अब आपकी लीला का विशेष रूप से विस्तार होगा। तब भगवान वहां से आकर के और सीधे पंचवटी पर विराजमान हो गए। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे प्रसंग नहीं आया कहीं विराम का, इसलिए आज की कथा को यहीं विराम। भगवान पंचवटी पर आ गए। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय। जय सीताराम 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 जय सीताराम। आवाज सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम।
सियावर रामचंद्र की
जय,
मोर मुकुट वंशी वाले
की जय,
आनंद कंद भगवान
की जय,
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय,
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय,
भक्तवत्सल भगवान की
जय जय।